इसके बाद अल्लाह ताला की कुदरत के इजहार के कौमों को पकड़ा तो हमारे लिए ये कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं थी, हम तो बहुत बड़े बड़े काम कर चुके। और वो काम कौन से हैं? फरमाया वल अर्द वस्समा बनैना हबैदिन व इन्ना लमूसिऊन, आसमान को हमने अपने हाथों से बनाया और हम इसकी कुदरत रखते हैं, और जमीन को हमने बिछा दिया और हम बड़े अच्छे हमवार करने वाले हैं। मैं जब इस आयत को पढ़ती हूँ तो मेरी आंखों के सामने बेडशीट बिछाने का मंजर आता है। आप देखिए, आप सिर्फ बेडशीट को सामने रख नहीं देते बल्कि आपकी कोशिश होती है चारों कोनों से पकड़ के खींचे, उसके एजिस को अंदर डाल दें ताकि देखने में खूबसूरत लगे। आप सोचिए आसमान कहीं रिंकल्ड दिखता है, ढीला डाला दिखता है, इधर से बम्पी इधर से उच्चा। हम एक दफा उस शीट पर लेट कर जब बैठ कर उठते हैं तो आप देखते हैं कि वो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा होता है। आसमान पर तो इतना कुछ है, इतना बोझ है कि हदीस में आता है कि एक उंगली बराबर जगह खाली नहीं दिखती, इसके बावजूद कितनी स्ट्रेची है। ये है माहिदून वमिन कुल्ली शैइन खलकना ज़ौजैन लअल्लकुम तज़क्करून। और जमीन को हमने बचाया और हम बड़े अच्छे हमवार करने वाले हैं, और हर चीज के हमने जोड़े बना दिए। कैसे बनाए जाके देखिए, मुजक्कर मुअन्नस के भी जोड़े हैं और डिफरेंट किस्मों के भी जोड़े हैं। करो क्या तुम इन सब को देखकर लअल्लकुम तज़क्करून, शायद कि तुम इससे सबक लो। क्या पता चला कि तुम भी कायनात में कुछ ऐसा काम करके देखो कि जिसके अंदर मकसदियत हो। अल्लाह ने जो कुछ बनाया बेकार नहीं बनाया, अल्लाह ताला ने जो कुछ बनाया उसका मकसद ये नहीं था कि बस बना दिया, बल्कि उनके पीछे खैर थी। तो फिर अल्लाह ने इतना कुछ किया, तुम भी ये काम कर लो, और वो क्या है कि तुम उसकी तरफ भागो। कैसे? फिर्रु इलल्लाहि इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन, बस दौड़ो अल्लाह की तरफ। इमेजिन करें क्या जहन में आता है, कभी खाना काबा की तरफ दौड़ते हुए लोग नजर आते हैं, कभी मस्जिदों की तरफ रमजान में, और कभी आप जैसे लोग कुरान सुनने के लिए जब भागते हुए आते हैं, देर से निकलते हैं फिर जल्दी भागते हैं, फिर चीजें गिरती पड़ती कि अपनी पसंद की जगह भी मिल जाए, आए देर से हैं लेकिन अब देर ना हो जाए। तो इस तरह से जो भाग दौड़ा है अल्लाह के तरफ, फिर रो अल्लाह, भागो कभी शौक से, कभी खौफ से, कभी दुआ के लिए, कभी बख्शिश के लिए, कभी अल्लाह से कल्ला मैं औसुबिक मिन गज़बिक, अल्लाह तेरे गज़ब से बचती हो, कभी कि अल्लाह औसुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, ए अल्लाह मुझे शैतान से बचा ले। और जब अल्लाह किसी तकलीफ में डाल दे तो उसके बाद फिर उसी को पुकारो, जैसे बच्चे को माँ मारती है तो बच्चा किधर दौड़ता है? माँ की तरफ दौड़ता है। कोई पकड़ना भी चाहे तो बच्चा और चिढ़ जाता है। तुम्हें जब कोई दुख आए फिर रो अल्लाह, तुम्हारे पास कोई खुशी आए फिर रो अल्लाह, अल्लाह ने वो कर दिया जो तुम सोचे हुए थे फिर रो अल्लाह, जाए नमाज बिछा लो, दो नफिल पढ़ लो। तुम किसी चीज को नामुमकिन समझ रहे थे वो हो गई फिर रो अल्लाह, पूरी जिंदगी का मकसद फिर रो अल्लाह। और जब भी मौका मिला अल्लाह के घर जाने का, तवाफ करते वक्त मुझे याद बहुत याद आती फिर रो अल्लाह। यहाँ अपने आप को अल्लाह के आगे घुमा रहे हो, झुका रहे हो, चला रहे हो, थका रहे हो, तो जब यहाँ से निकलोगे तो उस वक्त इस सारे प्रोसेस को छोड़ न देना। और आइए हम सब अपने लिए दुआ करें कि रमजान के बाद भी फिर रो अल्लाह पे अमल कर सके, सुस्त होके बैठ ना जाए, और अपने आप को मुतमईन ना कर लें कि इस साल तो काफी नेकियां हो गई, अब काफी अगले साल देखेंगे क्या होंगे। और नबी की सूरत में स्व मौजूद है, इसीलिए कहा इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन, बेशक मैं उसकी तरफ से साफ साफ खबरदार करने वाला हूँ। यूं ही होता रहा इनसे पहले की कौमों के पास भी कोई रसूल ऐसा नहीं आया जिसे उन्होंने ये ना कहा हो कि ये साहिर है या मजनू, क्या इन सब ने आपस में कोई समझौता कर रखा है? नहीं, बल्कि ये सब सरकश लोग हैं, रिबेलियस, अल्लाह की नाफरमानियां करने वाले। बस नबी इनसे रुक फिर लो, तुम पर कुछ मलामत नहीं, अलबत्ता नसीहत करते रहो, क्योंकि नसीहत ईमान लाने वालों के लिए नाफे है। हाईलाइट कीजिए, यहाँ एक बहुत बड़े सवाल का इसमें जवाब है। आप कहते हैं कि नसीहत नहीं लेते, आजकल के बच्चे सुनते नहीं हैं। कोई कहती है मेरे शौहर कभी कोई बात करूं तो आगे से कहते हैं बस बस अपनी नसीहतें अपने पास रखो। इसी तरह किसी बीवी का भी ये एटीट्यूड हो सकता है, तो अल्लाह ने यहाँ बता दिया नसीहत से फायदा उठाने की रिक्वायरमेंट ईमान है। ईमान होगा तो आप बीवी से भी कहेंगे बेगम कोई अच्छी बात है तो मुझे बताइए, क्या सीखा कुछ मुझे भी बताएं। अच्छी बीवी भी शौहर से पूछेगी कि आप क्या सीख कर आए, क्या सुना आपने, जुम्मे में क्या पढ़ा। बच्चे भी फिर कान रखेंगे, और अगर नसीहत ना ले कोई, भागे आपके पास सुन के कि बस रखो अपनी नसीहतें पास, शुरू हो गई तुम्हारी नसीहतें, तो ईमान की कमी है। फिर क्या करें, नसीहत करना छोड़ दें? हाँ, नसीहत करना छोड़ दें, ईमान बढ़ाना शुरू कर दें। उनको फिर वो ड्रिंक्स पिलाइए एनर्जी वाले जो ईमान दें, और वो अल्लाह की मार्फत अल्लाह की कायनात पे गौर व फिक्र है, मोहब्बत दिलाना, कभी जन्नत की बातें कभी जहन्नम की बातें, ताकि उनके अंदर का ईमान सोया हुआ जाग जाए। फिर उसके बाद आप जितनी मर्जी नसीहत करें, सोते बंदे को आप कितना बातें कर लें, एक भी लफ्ज़ सुनेगा? कुछ भी नहीं सुनेगा। आप सोचें, आप अपने बच्चे के पास बैठ के उसको जाके पूरी सूरह ज़ारियात पढ़ाएं, फिर आप बाद में से पूछे बेटा अमल क्यों, क्या मैं तो सो रहा था। तो सोए हुए ईमान के साथ नसीहत अच्छी नहीं लगती, यकीन कीजिए, रिक्वेस्ट करूंगी सबको। इससे दीन बदनाम होता है। उठते बैठते नसीहतें ना करें, पहले लोगों को जगाएं, उठाएं, बेदार करें उनको कि उठो मुंह धो लो, चलो अपने आप को फ्रेश अप करो, चलो कुछ खा लो। और कभी खाना खाने के दौरान नसीहतें ना करें, बच्चे फिर जान छुड़ाने लगते हैं, शौहर भी भागने लगते हैं। नसीहत उस वक्त करें जब अगला एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, और अल्लाह ताला हमें हिकमत अता फरमा दे। मैंने जिन्नो इंस को इसके सिवा किसी और काम के लिए पैदा नहीं किया कि वो मेरी बंदगी करें, मैं इनसे कोई रिस्क नहीं चाहता और ना ये चाहता हूँ कि वो मुझे खिलाएं। ये है वो आयत जो सबको याद होती है, वमा खलकतुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून, कि मैंने इंसानों को और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। आप मुझे बताइए कि इबादत से मुराद क्या है, कि 24 घंटे नमाज पढ़ें? हाउ इज इट पॉसिबल? हर वक्त हम नहीं कर सकते, तो फिर इबादत कैसे है? हर वो काम जो अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक किया जाए वो इबादत है, चलना फिरना सब कुछ। और आप कह लीजिए कि जब एक इंसान अपनी जिंदगी को सुन्नतों के मुताबिक ढालता है तो उसकी पूरी जिंदगी इबादत बन जाती है। सुन्नत वो मैजिक स्टोन है कि जो कागज को भी नोट बना देती है, और इबादत जन्नत की करेंसी है। जिंदगी आमद बराए बंदगी, और जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। जब हमने अल्लाह की बंदगी की बजाय शौहर की बंदगी की, मुआशरे की बंदगी की, तो क्यामत के दिन वो हमें पहचानेंगे भी नहीं। इसी तरह आप देखिए कि इबादत कैसे होती है जिंदगी। शादी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, गम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, जीना मरना, लेना देना, मिलना जुलना, ये सब कुछ अल्लाह के हुक्म से जब करेंगे तो आप देखेंगे इबादत इबादत। अब कुछ लोग इस आयत को सुन के सर झटकेंगे, हाँ हमसे नहीं होती इबादत, हम को फारिग है। कुछ हम कहेंगे अच्छा ठीक है ना, पार्ट टाइम ठीक है, हम 24 घंटे नहीं कर सकते, सॉरी। कोई कहेगा हाँ हम मस्जिद में जाके इबादत करेंगे, दैट्स इट, बिजनेस में हमें कोई ना टोके। लेकिन जब दीन से लाइल्म इंसान जो होता है ना, उसके लिए इबादत बहुत छोटी चीज हो जाती है। लेकिन जब दीन के साथ इल्म भी आ जाता है ना, तो फिर दीन मजहब बन जाता है, फिर लाइफस्टाइल बन जाता है। लाइफ टाइम गुलामी की बातें हो रही हैं। जो काम सुन्नत तरीके से करेंगे अल्लाह के हुक्म से, वो इबादत बन जाएगा। देखिए ऊपर अल्लाह ने अपनी सिफत की ना, मुहसिन, मैं बहुत फैलाने वाला हूँ, कुदरत वाला हूँ, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला कहते हैं जैसे मैं दिन ब दिन इस दुनिया में कायनात को फैला रहा हूँ ना, जैसे एक गुब्बारे पर अगर आप चंद नुक्ते लगा दें फिर उसमें हवा भरते जाएं तो हर नुक्ता पहले से दूर होता जाएगा, इसी तरह दिन ब दिन कायनात की बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर हो रही हैं। आपको महसूस हो रहा होगा कि आज ये चीज़ आ गई, कोई मिसाल है कोई एक नया सितारा याद हो गया, कोई कुछ हो गया। इसी तरह अल्लाह सुभान व तआला हम सबको इबादत का शौक दिलाकर, तहकीक का, रिसर्च का, और इसी तरह अल्लाह सुभान व तआला की बातों को आगे ले जाने का शौक दिलाते हैं। तुम भी तो अपनी जिंदगी में नए नए काम शुरू करो, तुम भी तो अपने आप को देखो कि मैं किस तरह से इन कामों को लूंगा। और इस आयत पे आप अगर 3 सेकंड गौर करें और खुद से पूछें, क्या हकीकत में मैंने जिंदगी का मकसद पा लिया? और यहां देख लीजिए अल्लाह कहते हैं मुझे तुमसे रिस्क नहीं चाहिए, ये जो 2.5 तुमसे मांगता हूं तुम खुद रख लो। क्यों? इन्नल्लाहा रज़्ज़ाकुज़ुल कुव्वतिल मतीन, अल्लाह तो वही रज़्ज़ाक है, बड़ी कुव्वत वाला जबरदस्त। बस जिन लोगों ने जुल्म किया इनके हिस्से कभी वैसा ही अज़ाब तैयार है जैसा इन्हीं जैसे पहले लोगों को इनका हिस्सा मिल चुका, इसलिए ये लोग मुझसे जल्दी न मचाए, आखिर को तबाही है कुफर करने वालों के लिए इस रोज जिसका इनको खौफ दिलाया जा रहा है। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि वो हमारे लिए इन चीजों को आसान कर दे। अल्लाह ताला ने आप देखिए कि हमारे लिए हर चीज खोल खोल कर बयान कर दी है, और जितना ज्यादा अपने ऊपर गौर व फिक्र करते जाएंगे उतनी खैर मिलती जाएगी।